रूपाली जी के गए हुए कुछ दिन बीत गए थे। उनके जाने से सहगल निवास में सबके दिन और रात सुकून से गुजरने लगे थे। अंतरा को भी रोज की झिड़की तानों से निजात मिल गया था। अब वो अपने हिसाब से घर और अपने बच्चे दोनों को संभाल लेती थी। यहां रूपाली जी के जाने से सहगल निवास में माहौल सुधर गया था। वहीं दूसरी तरफ रूपाली जी जब अपनी बहन के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उन्हें गहरा झटका लगा। यहां वे घर की मालकिन बनी अपनी बहुओं पर हुक्म झाड़ती थीं और वहां उनकी बहन की बहू पूरे घर पर राज करती थी। मासी जरा सी कोई बात कह दे तो उनसे लड़ पड़ती थीं। मजाल हो जो एक बात सुन ले, और हर बात का ऐसा तीखा जवाब देती थीं कि उनका मुंह बंद कर देती थीं। कुछ ही दिनों में अपनी बहन के उस घर में हालात देखकर रूपाली जी आश्चर्यचकित रह गई थीं। ये वही बहन थी जो उन्हें अपनी बहुओं पर रौब जमाने, उन्हें दबाकर रखने को कहती थी और खुद अपनी बहू के इशारों पर चलती थी। आज भी घर के सब काम, सब जिम्मेदारियां वही उठा रही थी। उस पर उनकी बहू को जब उनका किया काम पसंद नहीं आता तो चार बातें और सुना जाती थी, और बेटा माँ को ही ये समझाकर चुप करवा देता कि वो कुछ नहीं कर सकता, अगर ज्यादा परेशानी हुई तो उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और बस यही मासी कमजोर पड़ जाती थी। शादी के घर में ढेरों काम थे और धीरे धीरे रिश्तेदार भी आने लगे थे। ऐसे में मासी के लिए रिश्तेदारों के सामने अपनी इज्जत और मान बचाकर रखना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, और रूपाली जी जो पहले दिन से उनसे बात करना चाह रही थीं, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। शादी संपन्न हुई और रिश्तेदार अपने घर लौटे तब जाकर उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपनी बहन से बात करने का फैसला कर लिया। शैलजा, तुम तो कहती थीं कि बहू को दबाकर रखना चाहिए, बेटे को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए, बहू काबू में रहे उसी में सास का मान है, पर तुमने तो अपनी बहू को अपने सर पर बिठाया हुआ है। कैसे हुक्म चलाती है वो तुम पर, पूरे घर पर उसने अपना कब्जा कर लिया है, तुम्हारा बेटा भी उसके पल्लू से बंध गया है, उसे बीवी के मुँह के आगे अपनी माँ का मान सम्मान और दुख तकलीफ नज़र ही नहीं आती। बहू के घर में होने के बावजूद सब काम तुम्हें करना और करवाना पड़ता है, उस पर वो महारानी आकर चार बातें और सुना जाती हैं तुम्हें, तुम इन सब के लिए कुछ करती क्यों नहीं? अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी बहू तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी जैसे इस घर से निकालकर बाहर फेंक देगी, और ना तेरा पति कुछ कहेगा और ना ही बेटा उसे रोकेगा। मासी ने उनकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर दुख, पीड़ा, मायूसी, बेबसी जैसे कई भाव उभर आए। उन्होंने बेहद अफसोस से अपनी आप बीती उन्हें सुनानी शुरू कर दी। क्या करूँ जिज्जी, हमने तो शरीफ और सीधी लड़की जानकर अपने बेटे का ब्याह इससे किया था। शादी से पहले बड़ी शरीफ और मासूम बनकर दिखाती थी, मिठाई सी मीठी बोली थी, पर जैसे ही शादी हुई सबसे पहले हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया और उसके बाद अपना असली रंग दिखाने लगी। बाहर काम करने जाती है, उसका ही रौब जमाती है, कहती है बाहर भी काम करे और आकर यहाँ घर में भी नौकरानी जैसे सब काम करे, ये उससे नहीं होगा। हम घर पर रहते हैं तो सब काम का बोझ हम पर ही डाल देती है, बेटे की कमाई पर घर चलता है इसलिए वो भी कुछ नहीं कहते, और विनोद तो जोरू का गुलाम बन गया था, अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं उसे। हम उससे बहू की शिकायत लगाते हैं तो कहता है कि कुछ दिन की जिंदगी है, शांति से बिता ले, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो घर छोड़कर चला जाएगा। अब तुम्हारे तरह दो दो बेटे तो है नहीं हमारे कि एक छोड़कर चला भी गया तो दूसरा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। एक ही बेटा है, अगर उसने ही मुंह फेर लिया तो कहाँ जाएंगे और किसके आगे हाथ फैलाएंगे। हमारे पास अब चुप से सब सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बहू की बात मान लेते हैं और अपने बचे खुचे दिन शांति से बिताकर भगवान की शरण में चले जाएंगे। कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे को रास्ते पर ले आती है। मासी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दूसरों के घरों में आग लगाने, उनकी बहुओं के खिलाफ उन्हें भड़काने और उनका जीना दुश्वार करने का बड़ा शौक था उन्हें, और अपनी बहू को लेकर भी ऐसे ही नेक इरादे थे उनके, पर भगवान ने ऐसी बहू उनके किस्मत में लिख दी कि उसने उनके सारे गुरूर को तोड़ते हुए उन्हें रास्ते पर ला दिया था। अपना दुखड़ा और मजबूरी सुनाकर मासी ने अपना मन हल्का किया, फिर कुछ पल ठहरने के बाद आगे कहने लगी, चिच्ची एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? रूपाली जी जो उनकी बात सुनकर गहरी सोच में खो गई थीं, उन्होंने नजरें उनकी ओर घुमाई और उन्होंने आगे कहना शुरू किया, तुम्हारी छोटी बहू बेटे के लक्षण भी हमें कुछ ठीक नहीं लगते, तो जरा संभाल कर रहना और बहू से बना कर रखना, वरना कल को अगर बहू बेटे ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो कहीं की नहीं रहोगी। अक्षय जैसा आज्ञाकारी, समझदार और शरीफ सीधा बेटा तो पहले ही तुमसे मुंह मोड़ चुका है, अपनी बीवी के साथ अलग हो गया है, अब दूसरे बेटे को मत खो देना, वरना बुढ़ापे में अकेली और बेसहारा हो जाओगी, जब मरोगी तो मुखाग्नि देने के लिए भी कोई नहीं होगा, और हो सके तो अक्षय और उसकी पत्नी से माफ़ी मांगकर उन्हें वापस घर ले आओ। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है जिसने बाहर काम करने के बाद भी पूरे घर को अकेले संभाला, जो तुम्हारे इतने अत्याचार सहकर भी इतने साल उस घर में रह गई, तुम्हारे तानों को सुनने के बावजूद उसने कभी अपनी मर्यादा को लांघकर तुम्हारा अपमान नहीं किया, अक्षय के साथ पूरे परिवार को अपनाकर सबका ख्याल रखा, वरना आजकल की बहू को बस पति से मतलब होता है। सास ससुर तो उसकी आंखों में खटकते हैं, बाहर काम करती है तो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करती है, जरा सी कोई बात बोल दो तो अलग हो जाती है, और बेटा तो बीवी के आते ही माँ बाप को भूल जाता है। अक्षय ने तो सालों सब सहकर भी उस परिवार को जोड़े रखा, तुम्हारे मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसे बेटे बहू मिले, मासी बोल रही थी। और उनकी बातें सुनकर रूपाली जी गहरी सोच में डूब गई थी। आहाना पर किया अत्याचार, दुर्व्यवहार, उसे सुनाए कड़वे बोल, सब किसी चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। क्या नहीं किया उन्होंने, फिर भी आखिरी दिन तक भी आहाना ने उनका अपमान नहीं किया, उनके आगे अपनी आवाज तेज नहीं की। खुद अक्षय को उन्होंने आहाना को तकलीफ पहुंचाने, उसके खिलाफ भड़काने की कोशिशों में कितना परेशान कर दिया था, और वो धैर्य के साथ सब संभालने की, उन्हें समझाने की कोशिश करता रहा। आज इस घर में बहू बेटे का असली रूप देखकर कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ कि सब पर राज करने की अपनी लालसा में उन्होंने क्या खोया है, अपने अहम में अंधे होकर कैसे अपनी किस्मत को खुद लात मार कर ठुकराया है। पर अब पछतावे का क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो जो बचा था उसे संभालना था, क्योंकि जैसे उनके लक्षण थे आगे चलकर उनकी इससे भी ज्यादा दुर्गति होने के आसार नजर आ रहे थे। आहाना तो सालों सब सहती रही, पर अंतरा ने कुछ ही दिनों में उन्हें आगाह कर दिया था। अन्वे हमेशा उसका साथ देता था, और अभिजीत जी संपत्ति पत्नी जैसा रिश्ता तो उनका सालों पहले खत्म हो चुका था, जब उन्होंने फलक की शादी सुमित से करवाने की अपनी जिद में उसे उस नर्क में धकेल दिया था। अब तो औपचारिकता और समाज व परिवार की नजरों में अपने रिश्ते का मान रखते हुए वे एक कमरे में दो कट्टर दुश्मनों जैसे रहते थे, सालों पहले दम तोड़ चुके रिश्ते के शव के बोझ को ढो रहे थे। पहले तो कभी कभार किसी मुद्दे पर बात या बहस हो जाया करती थी, पर जब से अक्षय घर छोड़कर गया था अभिजीत जी ने उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था, बात करना तो बहुत दूर की बात थी। उनका रिश्ता जो किसी तरह घुट घुट कर सांस ले रहा था अब दम तोड़ चुका था, और जितने परेशान वे उनसे थे, कल को अगर बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाला तो वे मूक दर्शक बने बस तमाशा देखते रहेंगे। आज अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब उन्हें अंधकार में नजर आ रहा था।
अन्वय यार, तुम्हारी माँ को क्या हो गया है? कहीं धोखे से किसी और को तो नहीं उठा लाए तू? अंतरा ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी हैरानी जाहिर की। उसका सवाल सुनकर अन्वय भी चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अब क्या कर दिया मम्मी ने?